इस प्रकार मुझको जो भेजते उनको मैं वैसे भेजता हूँ, उनका भेजा हुआ उनको भेजता हूँ, उसका माना हुआ उसको मैं मानता हूँ। तो उस महात्मा में या ईश्वर में जो कुछ हमारे को प्रतीत होता है वो हमारा ही प्रतिबिंब प्रतीत होता है। ईश्वर को हम ये समझ लें कि ईश्वर क्षण मात्र में उद्धार कर सकते हैं तो बस हमारा उद्धार क्षण मात्र में हो जाएगा। ईश्वर के विषय में यह समझ लें कि अंतकाल में श्रवण करने से उद्धार हो जाता है, तो अंतकाल में भगवान का श्रवण कर ले। ईश्वर के विषय में यह मान ले कि ईश्वर तो शब्द का सदा ही है, उनकी पूर्ण कृपा सदा ही है, तो बस उसी वक्त उद्धार हो जाएगा। यह मानने के साथ इतना आनंद इतनी शांति मिलेगी जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। एक कोई ऐसा महात्मा हुआ है कि जिसकी समझो कि ईश्वर के समान शक्ति हो और वो यहाँ समझो पधार जावे और हम उसको चीन लेवे और विश्वास भी कर लेवे, तो उसी वक्त उसी समय के बीच के हमारा जीवन बदल जाएगा। कल आपको वो बात सुनाई थी परशुराम जी की, और परशुराम जी एकदम क्रोध में आग बमूरे हो रहे थे और भगवान राम से बात हो रही है तब भी राम को पिछड़ना नहीं, और फिर एक प्रकार से थी श्री राम से कहा कि राम रमापति कर धन लेहु कड़े चाप मीते संदेहु। अभी तक मेरे संदेह है, आपकी बातों से किसी शंका होती है कि मानो आप भगवान हैं, किंतु ये मेरा संदेह दूर हो जाएगा इस धनुष को चढ़ा दोगी। तो छुअत धनु अपन नहीं चढ़ गए हूँ अरे परशुराम मन विस्मय भय हूँ, तो धनु को धनुष को छुआ तो अपने चढ़ गई, चढ़ाना पड़ा ही नहीं। तो उसको और आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु ने तो ये कहा कि मैं इसको चढ़ा सकता हूँ, ये तो अपने चढ़ गई, अब उसके संदेह रहा ही नहीं। तो उसी वक्त उनका भाव बदल गया और स्तुति करने लगे और एक प्रकार से समझो कि समझ गए कि साक्षात भगवान है। तो समझने के बाद तो उसी वक्त उसका समझो कि जीवन बदल गया, भाव बदल गया। तो ऐसे ही हमारा भाव बदल सकता है। कोई ऐसा कोई महापुरुष और हम ऐसा समझे कि इनकी हमारे पर पूर्ण दया है, अपार दया है, इतनी दया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो उसी वक्त उसको आनंद होना चाहिए। क्योंकि पहले तो वो अपने पर दया नहीं समझता था, तो जब दया समझे तो उस दया का लाभ उसको होना चाहिए ना। एक महात्मा के पास में कोई आदमी शिक्षा के लिए जाता है, एक परीक्षा के लिए जाता है, तो महात्मा तो समझ लेता है कि ये तेरी परीक्षा करने के लिए आया है या तुम्हारे से लाभ उठाने के लिए आया है। तो परीक्षा करने के लिए जो उनके पास में जाता है तो परीक्षक को जिस प्रकार से इम्तहान देना चाहिए वो उसी प्रकार से देता है। तो जो समझता है तेरी परीक्षा लिए लेने के लिए आया, कोई श्रद्धा से प्रेम से कोई सीखने के लिए तो आया नहीं है। और जो सीखने के लिए जाता है उसको फिर अपने उसके माफक उससे वो बात करता है और सबसे एक समान बात करने लगे तो ये न्याय भी नहीं है। और मान लो थोड़ी बार के वास्ते न्याय भी है तो भी सब कोई समान भाव से लाभ नहीं उठा सकते, उठा ही नहीं सकते। कैसे? ये मान लो कोई एक अच्छा पुरुष है, महापुरुष है और व्याख्यान दे रहा है थोड़ी बार के वास्ते, नहीं भी है तो किसान मान लो कि जैसे श्री रामसिंह जी महाराज है और व्याख्यान दे रहे हैं और पब्लिक उस पब्लिक जो व्याख्यान सुन रहे हैं रामसिंह जी महाराज का, उनमें सभी प्रकार के मनुष्य हैं। व्याख्यान समाप्त हो गया, सब लोग अपने अपने घर पर जाने लगे। एक भाई ने कहा कि ये सब ढोंग है ढोंग। दूसरा बोला राम राम राम, तुम बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, ये अच्छे त्यागी महात्मा पुरुष है उसको तुम यूं कहते हो कि ये सब ढोंग, तुम्हारा कैसे कल्याण होगा। दूसरा बोला कि ढोंग तो नहीं है किंतु दुकानदारी है, अपना अपना सभी को पेट भरते हैं, तो ये लोग अपने ये दुकानदारी चला रहे है, इसे एक प्रकार से इनकी सब खाते जाते खाने पीने को मिल जावे, कपड़ा मिल जा रहने के लिए जगह मिल जाए, सुविधा हो जाए, तो यह एक दुकानदारी रोजगार करने की एक पद्धति बोले अरे मूर्ख तू भी ऐसा नहीं जानता, ऐसे महात्मा पर ऐसा कलंक लगा उसने, ये तुम्हारे से क्या लिया, क्या रोजगार किया तुम्हारे। तीसरा बोला कि ये सब तो मूर्ख, असली बात यह है कि हम देखते हैं कि महाराज न तो रुपया छूते हैं और न कोई मान बढ़ाई चाहते हैं, कोई नमस्कार करना चाहो तो भी नहीं चाहते, फूल माला है और है ये भी ऐसा नहीं चाहते, रुपया भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, किंतु कीर्ति चाहते। कोई आदमी इनकी कीर्ति करे, प्रशंसा करे, तो एक प्रकार से इन चित्त में प्रसन्नता होती है। चौथा बोला कि तुम भी ऐसा बड़ा मूर्ख, मान बड़ा प्रतिष्ठा को तो ये बुरी बात समझते हैं, निषेध करते हैं, खुद नहीं चाहते, तो तुम क्या मानते हो। बोले हम ये मानते हैं कि उस कोटि के साध्य करने की क्या सुख, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हैं, इस प्रकार के चलने से लोगों को भी लाभ होगा, मुझको भी लाभ होगा, ऐसे साधक पुरुष। दूसरा एक बोला रहे मूर्ख तू भी नहीं जानता, ये साधक क्या है, ये तो सिद्ध महात्मा है, ये तो परमात्मा को प्राप्त हो चुके, अपने तो हो चुके और दूसरों को भी बनाने की चेष्टा करते। एक और बोला कि तुम भी नहीं जानते, तो बोले ये तो संसार के कल्याण के लिए ही आए हैं, क्या यहाँ के थोड़े महात्मा हुए हैं, भगवान ने भेजा है, ये तो भगवान ने अपना अधिकार देकर के, अपनी शक्ति देकर इनको भेजा है कि जाओ संसार का कल्याण करो, ये तो कार्य पुरुष है, ये तो उच्च कोटि के महात्माओं में भी उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो एक से का कितना डिफरेंस है। तो एक प्रकार से सब अलग अलग मानता है, तो उनको यदि ईश्वर के घर न्याय हो है, तो उस न्याय के अनुसार भी एक प्रकार से अपने भाव के अनुसार ही लाभ होना चाहिए। व्याख्यान देते हैं सबको एक ही समय में और एक ही बात सबको कहते हैं और सब कोई उस साथ में सुन रहे हैं, देश और काल और वस्तु में कोई फर्क नहीं है, एक ही देश में, एक ही काल में और एक ही व्याख्यान, एक ही मनुष्य है, एक ही पदार्थ को सुन रहे हैं, किंतु सुनकर के उनकी सबकी अपनी अपनी भावना अलग अलग है, श्रद्धा अलग अलग है, मान्यता अलग अलग है, तो इस वास्ते मान्यता के अनुसार ही उनको लाभ होता है, या जो संसार ही हमारी मान्यता ही तो है, इस संसार को जो हम लोग सब देख रहे हैं एक रूप से नहीं देख रहे हैं, जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं उनकी दृष्टि दूसरी है, उनकी क्या दृष्टि है कि बहुनाम जन्म नाम अंगते ज्ञानवान मान प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार से थी मुझको भजता है माने मानता है वह महात्मा संसार में महात्माओं में भी अति दुर्लभ महात्मा है। कितने मनुष्य इस संसार को भोग बुद्धि से देखते हैं कि भोगने के योग पदार्थ, और कितने वृद्ध जो पुरुष है अपने वैराग दृष्टि से देखते हैं, उनका वैराग का भाव है, कितने जो लोग है इसको भक्ति की दृष्टि से देखते हैं, कितने ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, और उनको अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार अपने अपने मान्यता के अनुसार उनको लाभ होता है। तो मान्यता हमारी हमारे लिए हमारी मान्यता काम आती है, तो हमको अपनी मान्यता उच्च से उच्च बनानी चाहिए, जो मान्यता के अनुसार लाभ है होना ही चाहिए। एक भाई व्रत है और वैराग की दृष्टि संसार को देखता है, तो वैराग का लाभ उसको होना चाहिए, उसको राग का लाभ क्यों होना चाहिए, एक आश्रित पुरुष को दंड मिले वो उसको क्यों मिलना चाहिए, और एक संसार के जिसे भोगों में आसक्त है तो आसक्ति वाले को जो दंड हो वो उसको होना चाहिए, और एक आदमी इसमें भगवान समझता है तो उसको वो लाभ होना चाहिए। यो मंग पश्यति सर्वत्र सर्वंते मयि पश्यति अतस्यांग न प्रणश्यामि सचमेव न प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जो मुझको सर्वत्र देखता है, सब में मुझको देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता, उसको मैं कभी चिपता नहीं, वो मुझसे कभी चिपता नहीं, उसको मैं देखता रहता हूँ, वो मुझको देखता रहता है। तो गिरने वाले को भगवान देखते रहते हैं। वो जो सूत्र है, वो जो शिरोग है, वो ऐसा मंग प्रबंधन से तान कते भयामी, जिस प्रकार से लोग मुझको रहते हैं उनको मैं वैसे भेजता हूँ। अच्छे से ख्याल करके देख लो। और जो ऐसा समझता है कि सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानी चात्मनी योगता सर्वत्र समदर्शन है, सब जो हमें समान भाव से देखने वाला योगता आत्मा पुरुष सारे भूतों में अपने आप को देखता है, अपनी आत्मा को देखता है, शरीर मात्र में नहीं देखता, वो महात्मा है। और सारे भूतों को अपने आत्मा में देखता है तो वो आत्मज्ञानी है। तो आत्मज्ञान का जो लाभ होना चाहिए उसको होना चाहिए। और एक दम भी है कर्मेन्द्रिया संयम में या से मनसा स्मरण इंद्रियार्थान की गूढ़ात्मा मिथ्याचार जो उच्च थे, कर्मेंद्रियों को रोक कर करके और मन से संसार के विषयों का स्मरण करता है। भगवान गीता के मां तीसरे अध्याय के सात के श्लोक में कहते हैं कि वह मिथ्याचारी है, दंभाचारी, पाखंडी है। तो पाखंडी को दंड होना चाहिए, वो इसको होगा। और दूसरा है कर्मयोगी है, जिस इंद्रिया मन का नियम अर्जुन है, कर्मेंद्रिया कर्मयोगी मन सकता है सभी चीज से। दूसरा एक कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मियों का साधन कर रहा है, तो वो एक प्रकार से थी इंद्रियों के द्वारा निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करता है, तो वो अपने श्रेष्ठ पुरुष है। जिस इंद्रिया मन का मन से सारी इंद्रियों को बस में कर करके और कर्मियों का आचरण करता है, तो कहते हैं कि वो तो श्रेष्ठ है। तो ये उन अपनी अपनी उन लोगों की सबकी मान्यता है, और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार वे सब लोग लाभ उठाते हैं। तो हम लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार ही लाभ या हानि उठाएंगे। तो जिसमें हानि है वो काम हम क्यों करें? ये किसी पर घटा लो कि जैसे एक सुंदर औरत है, उसका जो लड़का है वो उसके माँ के चिंता है, और एक सन को तो मुंह से पान करता है, और दूसरा जो माँ का सन है उसके ऊपर उसका हाथ है। लड़का को भी खुशी है, माँ को भी खुशी। माँ का उस लड़के में वात्सल भाव है, और लड़के का यह भाव है कि ये मेरी धरती, मेरा पालन करने वाली, मेरे जन्म के देने वाली मेरी माँ है। उस लड़के का उसमें मातृभाव। उसी औरत के साथ में रात्रि के समय में उसका पति उसके साथ में शयन करता है, वो भी उसके साथ में शयन कर करके समझो कि हृदय के लगाता है और सम स्पर्श करता है। उसका दूसरा भाव है, वो उसके अनुसार एक प्रकार से उसे लाभ उठा रहा है। तीसरा एक कोई वृक्ष पुरुष है, उसके नेत्रों के सामने वो पड़ गई, तो वो समझता है कि ये क्या चीज है कि इसमें तो मलमूत्र भरा हुआ है और हार्ड मांस का पिंजर है, जैसे आपने पायखाना है, यह है तो वो उसे ग्रस्त है, उनकी तरफ देखता ही नहीं है। और एक जो है समझो कि कोई भगवान का भक्त है, वो समझता है कि सब में भगवान विराजमान है, तो उनकी वो सेवा करता है, नमस्कार करता है। और पांचवा एक ज्ञानी है, वो कहता है कि सब मेरी आत्मा ही है, मेरे स्वरूप है। उन सबको अलग अलग लगता है, और कोई बाघ आ गया तो वो जिम लगाता है कि ये मेरा भोजन है, समझा, मिल जाए तो मैं खा जाऊं पेट भर लूं। एक प्राणी है उसकी दूरी तो सबकी अलग अलग वृत्ति है, और सबको अलग अलग लाभ होता है अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। इसी प्रकार से भगवान के विषय में अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अलग अलग लाभ होता है। ये बात किसी पर घटा हमको जो सुख दुख लाभ हानि जो कुछ मिलता है वो अपनी मान्यता के अनुसार मिलता है। कोई एक व्यक्ति यहाँ आया, आपका तो उसके साथ हुआ द्वेष, और मेरा है उसके साथ में प्रेम, तो वो व्यक्ति मुझको तो प्रेम देने वाला है और आपको एक प्रकार से दुख देने वाला है और द्वेष देने वाला है, कोई आदमी मैं देखता हूँ कि मेरे पास में बहुत आदमी आते हैं जो आपसे भी मैं बैर रखते हैं, वो भी आते हैं और हमारे पास आकर के अपने बैर का परिचय नहीं देते, किंतु दूसरों से सुनकर के मैं समझ लेता हूँ इनका परस्पर में बैर है और मेरे सामने दोनों ही आते हैं, दोनों ही मुझसे प्रेम करते हैं, उनका परस्पर में बैर है किंतु मेरे साथ दोनों का ही प्रेम है, मेरे में दोनों प्रेम रखते हैं और मेरे सन्मुख वो अपना परस्पर का बैर है उसका प्रदर्शन भी नहीं कराते कि हमारा अब श्री के मां कोई बैर है। और मैं दोनों को जानता हूं और मौका पड़ने के ऊपर दोनों को समझा करके उनकी शत्रुकरण की विशेष शास्त्र में तो ये बात बताई है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैर त्यागः। महर्षि पतंजलि ने पातांजलि योग दर्शन के दूसरे पाद में यह बात कही, जो अहिंसा रहित है, अहिंसा के विषय में जो प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसा जो पुरुष है उसके सामने जो दो आदमी बैर को लेकर आ जाते हैं तो वे भी अपने बैर का त्याग कर दे, पशु भी आ जाओ तो स्वाभाविक ही उनके मां बैर भाव है तो नहीं रहते, द्वितीय संगत बात है, शास्त्र संगत है, तो अपना उच्च से उच्च भाव बनाना चाहिए। भक्ति के मार्ग में उच्च से उच्च भाव यह है कि सभी भगवान को स्वरूप है और उनकी जो देश है भगवान की लीला, देश का मात्र से भगवान की लीला, मात्र से भगवान को स्वरूप तथा ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान के सिद्धांत में सबसे उच्च से उच्च बात यह है कि सब जो है तो ब्रह्म को स्वरूप है और वो ब्रह्म मेरे से अभिन्न है, सब में ब्रह्म भाव को देखता है, एक ब्रह्म के सिवा और दूसरी वस्तु को नहीं देखता और दिखने वाले पदार्थों को तो यह समझता है कि है तो ब्रह्म और दिखते हैं पदार्थ, फिर उनकी दृष्टि में एक ब्रह्म के साथ दूसरी बात रहती ही नहीं, सारे संसार का अभाव होकर के एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही तो रह जाता है और फिर वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और इसका मन बुद्धि आदि सब ब्रह्म रूप हो जाते हैं। तद्बुद्धि सदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन् ते पुनरावृत्ति ज्ञान निर्दुष्कलमता, तत्मन उस ब्रह्म रूप ही जिनकी बुद्धि हो गई है, ब्रह्म रूप जिनका मन हो गया है, ब्रह्म के माध्यम की स्थिति हो गई है और ब्रह्म के वो परायण हो गया है और वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो गया है, फिर ऐसा जो पुरुष ज्ञान के द्वारा जिनके सारे पाप नष्ट हो गए वे समझो कि अपने पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, फिर संसार में लौट कर वापस नहीं आते, जो अंत सुखमंत्राराम है तथा अंतर ज्योति रे हुए से योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधिगच्छति। अंत माने जो ब्रह्म के माई सुख वाला है, ब्रह्म कोई सुख के रूप से अनुभव करता है और ब्रह्म के माई क्रीड़ा करता है कि ब्रह्म के सुख का जो मनन है वो क्रीड़ा है और ब्रह्म के माई वो ज्योति वाला माने ज्ञान वाला है, ब्रह्म के ज्ञान से ही वो ज्ञान वाला है, ऐसा ब्रह्म भूत पुरुष है, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का निश्चय वाला पुरुष है निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद के माँ वास्तव में तो उनके कोई दृष्टि नहीं थी, किंतु उनका जो शरीर है उसके शरीर में जो अंतःकरण है उस अंतःकरण में संसार का तो अत्यंत भाव प्रत्यक्ष और ब्रह्म का एकदम प्रत्यक्ष भाव, ब्रह्म का तो भाव ब्रह्म तो अस्तित्व है, ब्रह्म तो है और संसार नहीं है, संसार दिखते हुए उसका अभाव ही प्रतीत होता है, जैसे नेत्रों के दोष से किसी को आकाश के वहां तिलमिले दिखे या समझे कि अपने मकड़ी के से जाले दिखे, दिखने वाले के हृदय में ये एक भाव है कि ये जाले यहाँ नहीं है आकाश यहाँ है, आकाश में तो भाव और उस जालों में अभाव प्रतीत होता है, इसी प्रकार से आकाश स्थानीय जो ब्रह्म है उसमें तो भाव और उसके साथ संसार स्थानीय जो ये सिरवर है इसके मन अतंत उनका अभाव। तो ये समझो कि ज्ञान के सिद्धांत में उच्च कोटि की चीज है, जो दूसरी ज्ञान के सिद्धांत में यह बात है कि सब है तो ब्रह्म ही है, जो कुछ सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, इस मापक का भाव है, उसको सब ब्रह्म ही प्रतीत होता है, ब्रह्म के स्वर को चीज प्रतीत ही नहीं होती। तो दो प्रकार की बात हुई, एक तो सबका बाध करके, सबका अभाव करके के भगवान का जो निर्गुण निराकार जो सच्चिदान घन स्वरूप है वो ही प्रतीत होता है, उसके सिवा संसार प्रतीत ही नहीं होती। और दूसरा यह है, एक प्रकार से ये प्रतीत होता है कि ब्रह्म संसार के रूप में परिणित हो गया, इस वास्ते या संसार भी तो ब्रह्म को स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म को संकल्प है, संकल्प है तो ब्रह्म को स्वरूप है, इसलिए संसार है तो ब्रह्म को स्वरूप है, ऐसी प्रतीति होती है। तो इस प्रकार का साधन करना भी उत्तम है, वो भी उत्तम है। योग के मार्ग के बीच के मां मैं भगवान का, मेरे भगवान, अरे ये सब भगवान के ही है, मैं भगवान का हूँ, अरे भगवान की इच्छा के अनुसार मैं सब कर्म करता हूँ, भगवान जो कराते हैं भगवान के लिए करता हूँ, ये भक्ति प्रसिद्ध, भक्ति प्रधान कर्मयोग है।